नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में आज 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने थापली में नेचर कैंप व इको कुटीर सहित कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पेश किया। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर गंभीर दंड लगाने का आह्वान किया। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय युवा कार्यक्रम का आगाज हुआ। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को एक दूसरे के प्रदेश की संस्कृति व भाषा को जानने व समझने का मौका प्रदान करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन आज पंचकूला की शिवालिक पहाड़ियों में मोरनी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर वन मंत्री राव नरवीर सिंह, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा, भाजपा की महिला उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्य प्रधान वन संरक्षक विनीत कुमार गर्ग सहित कई अधिकारियों व नेतागण व विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने थापली में नेचर कैंप का लोकार्पण व नवनिर्मित इको कुटीर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बताया,
ये 76वां वन महोत्सव का आज यहाँ मोरनी में आज इसका शुभारंभ हुआ है और इस अवसर के ऊपर आज के दिन मैंने एक थापली में नेचर कैंप का उसका भी उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर लगभग 84 लाख रुपए की लागत से वो बन करके तैयार हुआ। एक हमने यहीं पर वन विभाग का ये रेस्ट हाउस विश्राम गृह उसका भी उद्घाटन किया है, जिसके ऊपर 89 लाख रुपए खर्च हुए। और एक हमने जो कालका से लेकर के ट्रैक वो बना है उसमें भी युवाओं को झंडी देकर के आज रवाना किया है।
मुख्यमंत्री ने थापली में पंचकर्म सेंटर का निरीक्षण कर मौजूदा सुविधाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने त्रिफला वाटिला व कालका से कलेसर ट्रैक से संबंधित पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों तथा पवित्र गंगा जल शिवालयों तक ले जाने वाले कांवड़ियों को बधाई दी।
आज हम सब ये 76वां वन महोत्सव मना रहे हैं। आज पवित्र दिन भी सावन मास का ये महीना और महाशिवरात्रि का ये दिन, मैं इस महाशिवरात्रि पर्व के पूरे प्रदेशवासियों को और हमारे जो लाखों की संख्या में लोग माँ गंगा के चरणों से पवित्र जल को लेकर के आते हैं और आज जल देवों के देव महादेव को समर्पित करते हैं, मैं उन सबको भी इस शिवरात्रि महोत्सव के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का महीना पौधारोपण के लिए सबसे अनुकूल होता है, इसलिए सभी को पेड़ लगाने चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधे लगाने का आह्वान किया है। जन भागीदारी से पेड़ लगाकर संरक्षण करने से ही प्रकृति को स्वच्छ, हरा भरा व सुंदर बनाया जा सकता है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पेश किया। श्री मांडविया ने कहा कि ये विधेयक खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों तथा सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक ओलंपिक और खेल आंदोलन की नैतिकता और निष्पक्ष खेल, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों को भी बढ़ावा देता है। श्री मांडविया ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य खेल संबंधी शिकायतों और खेल विवादों का एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से समाधान प्रदान करना भी है। श्री मांडविया ने निचले सदन में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किया। विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 में संशोधन करना है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर गंभीर दंड लगाने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता सहित कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सम्मान करना आवश्यक है। सिंधु जल संधि पर श्री हरीश ने स्पष्ट किया कि यह संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। श्री हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने में भारत की भूमिका का उल्लेख किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में केंद्रीय युवा सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राज्य युवा कार्यक्रम का आज आगाज हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया। इस महाकुंभ में 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित राज्यों से 600 युवा भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा,
इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, देश भर से 24 राज्यों के युवा प्रतिभा ने हिस्सा लिया है। ये कार्यक्रम भर नहीं लेकिन पूरे भारत को जानने के लिए युवाओं को एक मौका है। वो ना अपने संस्कृति हो, प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने भाषण हो या एक दूसरे के भाषा हो, उसको समझने का ये युवा साथी काम करेंगे। दिखाई देता है जो नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, एक प्रकार से उसकी छटा, एक लघु भारत की छटा आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दिखाई दे रही।
उन्होंने कहा कि ये मात्र कार्यक्रम नहीं, युवाओं के लिए एक दूसरे के प्रदेश की संस्कृति व भाषा को जानने व समझने का मौका है। कार्यक्रम का समापन 25 जुलाई को होगा। उन्होंने सभी युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा हरियाणा को जानेंगे और अपने प्रदेश में जाकर बताएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2025 में घरेलू सकल उत्पाद 6.5% और 2026 में 6.7% बढ़ने का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग, सामान्य मानसून और मौद्रिक नरमी से विकास के दृष्टिकोण का बल मिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 2028 तक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2035 तक दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर $10.6 trillion हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनली की आज की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था लगभग $1 trillion की होगी और 2030 और 2035 के बीच ये राज्य शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की 30 व 31 जुलाई को ली जाने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार एवं सचिव डॉ. मुनीश नागपाल ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि HSET परीक्षा में प्रदेश भर में 400,000 से अधिक अभ्यर्थी 673 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। बोर्ड सचिव डॉ. मुनीश नागपाल ने कहा,
इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है जाके लिंक से अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, अपना मोबाइल नंबर है, उसके पासवर्ड डालकर वो डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी अभ्यर्थी हैं वो एडमिट कार्ड पर दर्शाए गए जो महत्वपूर्ण जो नोट है, जो दिशा निर्देश है, उनको ध्यान से पढ़कर, उनको समझकर उसका पालन सुनिश्चित करेंगे। और मैं इसमें ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, एडमिट कार्ड का प्रिंट रंगीन फोटो के साथ लेकर आना जरूरी है। प्रवेश पत्र पर लगी फोटो के साथ कोई डिसऑर्डर टेम्परिंग करने की अवस्था में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि परीक्षा के नकल विहीन एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु सभी परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए 220 उड़न दस्तों का गठन किया गया है। हरियाणा में सामान्य प्रवेश परीक्षा CET की परीक्षा के लिए सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मुफ्त बस सेवा मुहैया करवाई जा रही है। हिसार बस अड्डे पर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। हिसार हेल्प डेस्क पर रोडवेज के एक कर्मचारी अजीत सिंह ने बताया,
मैं सभी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको फिर सूचना देना चाहता हूं कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में 8 जोन बनाए गए हैं विद्यार्थियों को ले जाने के लिए। बालसमंद है, आदमपुर है, अग्रोवा है, उकलाना है और बरवाला है। तो जिन अभ्यर्थियों के अपने आसपास का जो स्टेशन लगता है, यानी बालसमंद के आसपास है, अग्रोवा के आसपास है, तो उनको हिसार आने की जरूरत नहीं है। वो अपने पास के ही बस स्टैंड से वहाँ मॉर्निंग शिफ्ट में 3:30 बजे से बस उनको प्रोवाइड करा देंगे और इवनिंग शिफ्ट के लिए 9 बजे से बस ऑपरेट होनी शुरू हो जाएगी।
ये परीक्षा 26 और 27 जुलाई को होनी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा में आज 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने थापली में नेचर कैंप व इको कुटीर सहित कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पेश किया। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर गंभीर दंड लगाने का आह्वान किया। आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय युवा कार्यक्रम का आगाज हुआ। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को एक दूसरे के प्रदेश की संस्कृति व भाषा को जानने व समझने का मौका प्रदान करेगा और भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।